તારીખ 9/7/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 249 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 162
કરાળ કાળ હોવાથી જીવને જ્યાં વૃત્તિની સ્થિતિ કરવી જોઈએ ત્યાં તે કરી શકતો નથી. કરાળ કાળ એટલે શું? કે અત્યારના જમાનામાં માણસોની વૃત્તિઓ, અયોગ્યતાઓ અને બીજા પૌગોલિક ભૌતિક સાધનો, એ બધા પ્રસંગો રંગરાગને વધારનારા પ્રસંગો છે. એ પરિસ્થિતિ એવી છે કે જીવને પોતાના પરિણામ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવા જોઈએ, તે કરી શકે નહીં. અનેક પ્રકારની જરૂરિયાતો પૂરી ન થાય એવી વર્તમાન પરિસ્થિતિ, કેમ કે જરૂરિયાતોનું લિસ્ટ બહુ લાંબુ છે. કરાળ કાળ માને ક્યાં કે બાહ્ય પરિસ્થિતિ ભૌતિક સાધનો કી, બાહ્ય જીવન કી, ઓર હમારે સંગ પ્રસંગ મેં આને વાલે હમારે સંબંધિત જીવો કી, પરિવાર કે સમાજ કે મિત્રો કે સબ પ્રકાર કે જીવ એસે હોતે હૈ કે જિનકો જિનકા જિસ કારણ સે ઉનકે સંગ મેં રહેને સે ઉનકે બીચ મેં રહેને સે પરિણામ કી બહિર્મુખતા બઢ જાતી હૈ ઓર અંતર્મુખ સ્થિતિ કરવી ચાહીએ ઉ સ્થિતિ નહીં હો પાતી હૈ. ઉસકો કહેતે હૈ કરાળ કાળ. કરાળ મેને દુષમ, કરાળ મેને વિપરીત, એસા વિપરીત કાળ હૈ કે જિસકે કારણ સે હિન્દી મેં ભી કરાળ શબ્દ લિખા હૈ, આતા હિન્દી મેં કરાળ શબ્દ ચાલુ હૈ. જીવ કો જહાં વૃત્તિ વૃત્તિ કી સ્થિતિ કરની ચાહીએ, સ્થિર કરની ચાહીએ વૃત્તિ, વો તો આત્મ સ્વરૂપ મેં હી સ્થિર કર સકતે હૈ. ઓર બાર મેં દેવગુરુ શાસ્ત્ર મેં રહેના ચાહીએ પરિણામ, બજાય ઇસકે સંસાર કે સંગ પ્રસંગ મેં ઓર ઉદય મેં પરિણામ ચલા જાતા હૈ, વો ચાહતે હુએ ભી કર સકતા નહીં. અપને મેં પરિણામ જો ચાહતા હૈ વો પરિણામ નહીં કર સકતા હૈ. સદધર્મ કા બહુત કરકે લોભ હી રહેતા હૈ. જો આત્મા કા સદધર્મ હૈ, સત્ય ધર્મ હૈ, અપના આત્મધર્મ હૈ, વો તો કહીં દેખને મેં નહીં આતા, જૈસે લોભ હો ગયા હો. ઇસલિયે ઇસ કાળ કો કલયુગ કહેને મેં આયા હૈ. કરાળ કાળ કો કલયુગ કહેને કા ભી યહી કારણ હૈ કે જીવો કી વૃત્તિયાં ભી ઠીક નહીં હૈ ઓર બહાર મેં પૌગોલિક પરિસ્થિતિ ભી ઠીક નહીં હૈ. આત્મસાધન કે લીએ દોનો પ્રતિકૂળ હૈ ઓર બહુત પ્રતિકૂળ હોને સે ઉસકો કલયુગ બોલને મેં આયા હૈ. સદધર્મ કા યોગ સત્પુરુષ કે બિના હોતા નહીં, ક્યોંકિ અસતમાં અસત હોતા નહીં. ક્યા લોજિક બઢિયા દિયા હૈ, બહુ બઢિયા લોજિક. એક વચનામૃત મેં કિતના બઢિયા લોજિક હૈ કે સદધર્મ કા યોગ મેને સદધર્મ કા પ્રાપ્તિ હોના, એસા યોગ બેઠના, યોગ્યતા હોના ઓર સત્પુરુષ કા સંયોગ મિલના, યે તો સત્પુરુષ કે બિના બનને વાલા નહીં હૈ. યોગ્યતા કી પ્રાપ્તિ ભી બહુભાગ સત્પુરુષ કે નિમિત્ત સે હી બનતી હૈ. इसके पहले तो हमारा जीवन क्या था वो हम समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि सत्पुरुष का योग, सद्धर्म का योग भी सत्पुरुष के बिना होता नहीं। सद्धर्म की प्राप्ति बिना सत्पुरुष तो होने वाली है ही नहीं, क्योंकि असत में सत नहीं है, सत्पुरुष में सत प्रकट है। और सत्पुरुष को छोड़ करके कहीं सत प्रकट नहीं है, सत प्रकट नहीं है तो असत में से सत आएगा कहां से? सत नहीं है इसका मतलब असत है। क्या बढ़िया बात कर दिया कि सत्पुरुष में सत प्रकट है, सत मौजूद है, इससे दूसरे को सत प्रकट हो सकता है। दिया से दिया जलाया जाता है, बिना दिया कोई स्वयं दिया प्रकट हो गए ऐसा बन नहीं सकता। ये रुई की बाट बनाते ना, बात बोलते ना आप, वो दिया जलाने के लिए बाती, बात को बाती बोलते हैं। रुई की बाती बनाए, घी भी पूरा हो गए, घी और बाती दोनों होने से क्या फायदा? प्रकाश को मिलेगा नहीं। कोई दिया से दिया जलाया जाएगा वो बाती जलाई जाएगी तब तो प्रकाश मिलेगा। तो प्रकाश आएगा वो प्रकाश को फैलाएगा, दिया का प्रकाश आएगा और दिया को प्रकट करके फैलाएगा। इसके बिना योग्यता होने पर भी क्या करें, क्योंकि असत में सत नहीं होता। आप कहेंगे कि शास्त्र तो है, लेकिन शास्त्र में जो दिया है वो पेंटिंग किया हुआ है, कागज पे दिया का चित्र कितना भी बढ़िया बनाओ, अच्छे अच्छे अच्छा उसका कलरफुल हो, फुल कलर, बढ़िया से बढ़िया कलर, दिखने में ऐसा लगे कि जैसे सच्चा दिया जल रहा हो, लेकिन वो दिया से दूसरा दिया जलने वाला नहीं है। और थोड़ा भी दिया सच्चा दिया हो उससे नया दिया जल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया दिया हो जाएगा, असत में से सत आएगा नहीं। सत का कारण भी सत ही होता है, असत सत का कारण नहीं होता है। न्याय तो वो है उसमें, न्याय कहो लॉजिक कहो, कि असत से सत नहीं होता है, सत से सत होता है, असत से सत नहीं होता है। बहुत करके सत्पुरुष के दर्शन की और योग की इस काल में अप्राप्ति दिखती है। परिस्थिति ऐसी है कि अरबों मनुष्य इस विश्व में होने पर भी सत्पुरुष होवे तो उसका दर्शन होवे, और होवे तो इसका संयोग होवे, ये बहुत करके अप्राप्ति दिखती है। जैसे अभी मुनि हो सकते हैं लेकिन मुनि दिखते नहीं है, 700-800 साल से कोई भावलिंगी मुनि, असली मुनि नहीं दिखते, ऐसा काल हो गया। ऐसा भी आने वाला काल ऐसा ही है कि पहले तो 150 साल तक किसी को सत्पुरुष मिलेगा नहीं, फिर कोई होएगा तो फिर आने वाले 100-200 काल में नहीं मिलेगा, फिर कोई हो जाए तो आने वाले 300-400 साल में कोई सत्पुरुष नहीं मिलेगा। ये बात होने वाली है, हो सकते हैं, लेकिन इस काल में उसके अप्राप्ति जैसी परिस्थिति है। जब ऐसा ही है तब सद्धर्म समाधि मुमुक्षु पुरुष को कहाँ से प्राप्त हो? जब सत्पुरुष ही नहीं मिले तो मुमुक्षु को सद्धर्म की प्राप्ति और आत्म शांति, समाधि माने आत्म शांति की प्राप्ति कहाँ से होगी? अर्थात नहीं हो सकती। और अमुक काल व्यतीत होने पर भी जब यह समाधि प्राप्त नहीं होती है तो मुमुक्षुता भी कैसे रहेगी? कैसे रहे? क्या कहते हैं, ये मार्मिक बात कर दिया है कि मुमुक्षु है, कोई मुमुक्षुता में आता है तो आत्मकल्याण की भावना से आता है कि मुझे अब मेरा कल्याण कर लेना है, मुझे अब कुछ संसार में से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरा आत्मकल्याण करना है। अगर वो आत्मकल्याण में आगे बढ़ करके सत्पुरुष के योग से आत्म शांति को प्राप्त नहीं करता है, आत्म शांति स्वरूप लीनता में उत्पन्न होती है, ऐसी आत्म शांति जब नहीं मिलती है, वहाँ तक नहीं पहुँचता है, माने मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुँचता है, तो अकेले अकेले उसकी मुमुक्षुता टिकेगी कहाँ से? इस काल में नहीं टिक पाएगी। हम लोग भी चर्चा करते हैं उसमें, वो बात को मुख्य क्यों लेते हैं कि सत्संग का योग बनाए रखो, जितना हो सके उतना सत्संग में रहो। ऐसा क्यों कहते हैं कि ये कलयुग ऐसा है कि अगर सत्संग नहीं मिले तो असत्संग का घिरावा इतना है कि मुमुक्षुता चली जाएगी। मैंने आत्मकल्याण की भावना आएगी, वो आई हुई भावना भी चली जाएगी, ये हालत हो जाएगी। यानी मुमुक्षुता में कोई जीव आया हो, आत्मकल्याण की भावना में आया हो और उसको सत्पुरुष नहीं मिलता है तो लंबे काल में उसकी मुमुक्षुता टिकेगी नहीं। सत्पुरुष मिलने से वो आगे बढ़ सकता है, आगे नहीं बढ़ेगा पीछे चला जाएगा, ये हालत होने वाली है। और बहुत से मुमुक्षुओं को ये शिकायत सुनने में आती है, बहुत से मुमुक्षुओं को, सत्संग बना रहता है वहां तक तो अच्छा लगता है, फिर सत्संग छूटने से फिर हमारे परिणाम में गड़बड़ हो जाती है, परिणाम बदल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, स्वाभाविक है। वर्तमान संसार दशा की योग्यता ऐसी होती है कि जैसा संग वैसा रंग चढ़े बिना नहीं रहेगा, जीव संग के असर लिए बिना रहेगा नहीं, इसलिए सत्संग आवश्यक रहा, यही कारण था। इसलिए कह कि अमुक काल मुमुक्षुता में बीतने पर भी अगर आत्म शांति को प्राप्त नहीं करता है जीव, तो उसकी मुमुक्षुता कहाँ से रहेगी? उसमें भी ड्रॉबैक आ जाएगा, पीछे हट हो जाएगी। इसलिए मुमुक्षु पुराना होता है वो फायदामंद बात नहीं है, वो बात फायदे की नहीं है। कभी कभी किसी मुमुक्षु की ऐसे पहचान कराने कराते हैं कि हमारे मुमुक्षु हैं, बहुत पुराने मुमुक्षु हैं, इतने साल से वो स्वाध्याय करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, तो ये सब बातें, लंबे काल से मुमुक्षुता होने की बातें तो उसकी क्रेडिट नहीं है, परंतु इसकी डिसक्रेडिट है। तो आप कितने साल से शास्त्र स्वाध्याय करते हैं? 40 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 40 साल हो गया, निर्देश कर रहे कि इतने साल रहे कैसे आप, आगे कैसे नहीं बढ़े, कि आपने अपने अपने आत्मकल्याण हुआ के नहीं हुआ, ऐसा जो हमारा प्रयोजन है उस प्रयोजन की दरकार नहीं की, तब तो काल निकला, तब तो काल निकला। किसी को सुनने के राग में काल निकल गया, किसी को सुनाने के राग में काल निकल गया, किसी को पूजा भक्ति करने में काल निकल गया, और किसी को ऐसे बातें करने में काल निकल गया। प्रयोजन को देखा नहीं कि हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं होता है, वो नहीं देखा, उसकी दरकार नहीं किया। शरीर में रोग होता है और नहीं मिटता है तो अपन चिंता कर लेते हैं कि देखो भाई 99 डिग्री बुखार रहता है, उतरता नहीं है, वो बेदरकारी करने जैसी बात नहीं है, पूरी दरकार से उसका डीप इन्वेस्टिगेशन करके उसका इलाज कराना चाहिए, वरना खतरा हो जाएगा, जान का खतरा हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है कि मुमुक्षुता के जो बाह्य प्रवृत्ति है उसमें प्राय मंद कषाय रहता है, ये 99 भी बुखार है वो, तब ऐसे कषाय की मंदता में काल लंबा हो गया तो जोखिम हो गया, ये जोखिम वाली बात है, ऐसा समझना चाहिए, यही कहने का अभिप्राय है यहाँ पर। हाँ, क्रॉनिक हो जाएगा, रोग घर कर जाएगा, वहां हम चिंता करते हैं, इधर चिंता नहीं करते। तो ये बेदरकारी महंगी पड़ जाएगी, ये बात है। बहुत करके जीव जो परिचय में रहता है उस परिचय रूप अपने को मानता है, जैसे कि जिस परिवार के साथ रहेगा तो पारिवारिक जितने जिस प्रकार के संबंध है उस रूप अपने को मान लेगा कि मैं तो फलाना फलाना हूँ, इस घर में मैं फलाना फलाना हूँ, और इसका प्रकट अनुभव भी होता है कि अनार्य कुल में परिचय कर रहा हुआ जीव अनिवार्य रूप से अपने को मानता है और आर्यत्व में मति करता नहीं। तो समय सार में तो इसका एक दृष्टांत लिया है पुण्य पाप अधिकार में, कि एक ब्राह्मण के वहाँ दो बच्चा, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक साथ दो लड़के थे, एक तो ब्राह्मण ने अपने घर में रखा और एक ने ब्राह्मण में चांडाल के घर में भेजा, तुम वहां पालो, उसको वहां पाला। तो जो चांडाल के घर में रहता था वो तो वैसे ही बोलचाल सीखने लगा, उसके घर में जो भी शिष्टाचार नहीं था, उटपटांग बातें होती थी और क्लेश होता था, और आपस में गाली गलौज हुआ करती थी जब झगड़े होते थे, तो वो भी वो सीख गया और ऐसा ही बोलने लगा। और जो ब्राह्मण के वहाँ था वो संस्कृत श्लोक पढ़ने लगा, वो वेद की ऋचाएं बोलने लगा, मंदिर जाने लगा, संध्या करने लगा। तो क्या होता है, प्रकट वही अनुभव है कि अनार्य कुल में परिचय कर किया हुआ जीव को अनार्य रूप से अपने को दृढ़ मानता है, वो तो मानता है कि हम तो चांडाली हैं, उनको पता नहीं कि मैं कहाँ पैदा हुआ, वो उनको पता नहीं है, वो तो अपने आप को मान लेता है कि मैं चांडाल हूँ। और जैसे दूसरे चांडाल प्रवृत्ति करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहन सहन उनकी होती है, उसी अनुसार उनकी परिस्थिति बन जाती है। उसको पता है कि ब्राह्मीण ऐसे रहते हैं, वो नहीं देखता है ब्राह्मीण को क्या, दूसरे ब्राह्मीण को देखते हुए भी मुझे ऐसा बनना चाहिए, ऐसी बुद्धि वो नहीं करता, मत मैंने ऐसी बुद्धि नहीं करता। ऐसे जिस प्रकार के संग में जीव रहेगा, वहां कितना भी वो हीन परिणाम करता हुआ दूसरे अच्छे मनुष्य को देख करके भी, ज्ञानी को देख करके भी ऐसी बुद्धि नहीं करेगा कि मुझे ऐसा होना है, ये बात नहीं करेगा, ये नहीं होगा। बहुत करके ऐसा होता है, अपवाद है उसमें, कोई जीव इसमें से भी निकल जाता है, कोई जीव इसमें से भी निकल जाता है। जैसे कबीर जी थे, कबीर, अखा भगत, निरात कोली, ये सब शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए हैं। कबीर जी का तो ऐसा सुना था कि इसका कोई माँ या बाप मुसलमान थे, एक हिंदू थे, एक मुसलमान थे, तो इनके काव्यों में कहीं वो फकीर की बातें भी आती हैं, करना फकीरी क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी, कई बातें वही आती हैं उनकी। लेकिन वो कुछ मार्गानुसार जीव, योग्य जीव थे, वहाँ से निकल गए। बहुभाग ऐसा नहीं होता है, कॉमन मैन में ऐसा नहीं होता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में से बाहर निकल करके अपना काम करने लग जाता है। तो क्या है, जो जैसा जैसा उनका एटमोस्फियर बनता है वैसा ही अपने को मान लेता है, उसमें संतुष्ट हो जाता है। और उसकी जो परिस्थिति है वो भी पूर्वकर्म अनुसार है, और स्थिति जब पूर्वकर्म अनुसार है तो बहुभाग मति भी पूर्वकर्म अनुसार ही चलती है, जैसी गति वैसी मति, ये बात हो जाती है। इसलिए महान पुरुषों ने और इसलिए हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि जीव को सत्संग यही मोक्ष का परम साधन है। देखो, हमने ऐसा निश्चय किया है, महान पुरुषों ने भी वो बात बताई है और हमने भी ऐसा निश्चय किया है कि जीव को सत्संग यही मोक्ष का परम साधन है, दूसरी कोई बात नहीं बताई। आप हमेशा मंदिर चले जाना, पूजा कर लेना, या नमस्कार मंत्र की माला फेर लेना, या कुछ न कुछ दान दे देना, ये कोई बात नहीं बताई। ग्रंथ पढ़ लेना वो भी नहीं बताया, सत्संग में रहना, क्या बताया, सत्संग में रहना। इसलिए महान पुरुष ने और हमने इसी बात को लेकर के हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है, वो बात हमने फुल एंड फाइनल कर दिया है कि जीव को सत्संग यही मोक्ष का परम साधन है। सिर्फ मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन का नहीं, मोक्ष का परम साधन सत्संग ही है, ही शब्द लगाया है।
महापुरुषों ने और उनके आधार पर हमने महापुरुषों ने और उनके आधार पर हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया।
किसके आधार पर?
इसलिए महापुरुषों ने और उनके आधार पर हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया।
अच्छा, ठीक है,
आत्मा के आधार से नहीं,
नहीं, महान पुरुष इसलिए महान पुरुषों और
उनके आधार पर हम
उसी को लेकर के हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है, ठीक है, ऐसा भी अर्थ निकलता है। और ऊपर जो बात किया है कि बहुत करके जिस परिचय में जीव रहेगा वैसा ही बन जाएगा,
इसीलिए तो ये बात
ये बात को लेकर के हमने भी ऐसा दृढ़ निश्चय किया है। परिस्थिति को देख करके, वास्तविकता को देख करके हमने भी ऐसा निश्चय किया है।
संघ को लेकर हम चलते हैं ना, तो सतगुरु तो जीवन मूर्ति है मोक्ष की, तो उनको देख करके हमको भी रंग चढ़ता है।
तो सत्संग में रहने के तो बात किया है,
उनके आधार पर हमने अपने आप से किसी आत्मा को देखा नहीं है, तो आत्मा का क्या निर्णय करेगा।
नहीं तो कृपालु देव ने ऐसा निश्चय किया है, क्या है कि इसलिए महान पुरुषों ने
और
उनको लेकर के तेने लेने
हिंदी में अर्थघटन किया है, और उनके आधार पर हम,
हाँ तो एकदम फिर ट्रांसलेशन नहीं है, गुजराती में वो बात है, ओरिजिनल तो गुजराती है। तेने लेने मोटा पुरुषोए अने तेने लेने हमें, मोटा पुरुषों ने शिक्षा वो भी अर्थ निकलता है, और उपरोक्त परिस्थिति की वास्तविकता को लेकर के हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि जीव को, मुमुक्षु जीव को सत्संग यही मोक्ष का परम साधन है। यही एक
दोनों प्रकार की योग्यता वाले जीवाणु,
हाँ सभी जीवाणु,
सभी
जीवाणु सत्संग तो देखो मुनि लोग, मुनि सच्चे मुनि होते हैं ना, वो भी सत्संग करते हैं, ज्ञानी भी सत्संग करते हैं। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुमुक्षु को सत्संग करना चाहिए, वो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि ज्ञानी मुनि क्यों करते हैं, मुमुक्षु तो जरूरत वाला है, उनकी तो कैपेसिटी नहीं है। ज्ञानी को तो आत्मा का आधार है, मुनि को भी आत्मा का आधार है, तो वो लोग क्यों सत्संग करते हैं, आत्मा में क्यों नहीं रह जाते। तो वो लोग चाहते तो हैं कि आत्मा में ही रह जाएं, फिर भी अनिवार्य रूप से उपयोग बाहर चला जाता है, उसमें अपना भी चलता नहीं है, भावना का नहीं चलता है वहां, इच्छा का नहीं चलता है, अभिप्राय का भी नहीं चलता है, अभिप्राय विरुद्ध, इच्छा विरुद्ध, भावना विरुद्ध परिणमन बाहर चला जाएगा। जब परिणमन बाहर जाएगा तो वो लोग विवेक करते हैं कि हमारे को बाहर जाना पड़ेगा तो कहाँ जाएं, बाहर तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारी इतनी पुरुषार्थ की शक्ति नहीं है कि हम निरंतर लीन ही रहें। पर निरंतर लीन रहने से तो एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर तो बाहर जाने का सब परिस्थिति नहीं रहती है, ये बात होती है। लेकिन बाहर उपयोग जाता ही है, जब बेवश रूप से उपयोग बाहर जाता है तो वो विवेक करते हैं कि हमको सत्संग में रहना है। मतलब सत्संग माने क्या, कि जहां जाने से उपयोग फिर अंतर में ढल जाए, इसी का नाम सत्संग है। जिस संग में जाने से उपयोग मुड़ करके फिर आत्मा में आ जाए, हम ऐसा संग करें कि जहां ऐसी चर्चा हो रही हो, अंतर्मुख होने की चर्चा हो रही है, हो रही हो, ऐसे संग में हम जाए। सुभाग भाई की इच्छा बहुत किया है, हम तो आप जैसे के सत्संग में रहने की भावना करते हैं, ऐसा लिखते हैं, बार बार लिखते हैं। अब सत्संग किसको किसको कहना कि अपनी सन्मार्ग में योग्यता जैसी है वैसी योग्यता धारण करने वाले पुरुष का संग, पुरुष माने आत्मा, उसका संग वही सत्संग कहा है। क्या बराबरी की योग्यता हो, जैसी हमारी योग्यता हो वैसी सामने वाले की, दूसरे की भी योग्यता हो, उसका संग करना, हीन योग्यता वाले का नहीं करना। क्या क्या कर होता है उसमें, भूल क्या होता है कि हीन योग्यता वाले अधिक योग्यता वाले की प्रशंसा करता है। आप तो हमारे से बहुत आगे हैं, आप तो बहुत आगे बढ़ गए, हम लोग पीछे रह गए। फिर कभी क्या होता है कि मान चढ़ जाता है। मान कब चढ़ता है तो प्रशंसा प्रिय लगती है, तब प्रशंसा प्रिय लगे कि समझ लेना कि हमने जहर खाया। क्या खाया? जहर खाया। इसलिए हीन योग्यता वाले से बचना है, और अपने से आगे वाले योग्यता जिसकी हो उसका संग में जाना, या बराबर वाले के संग में जाना। ये सत्संग में भी विवेक करने की बात है। बहुत कम लोग ऐसा विवेक करते हैं, लेकिन ये विवेक करने की बात है। इसके संग में भी वो देखते हैं कि मेरे आत्मभाव आविर्भूत होते हैं, ऐसा ये संग है या कि दूसरे प्रकार का है, वो बात देखेंगे। ज्ञानी भी कि मेरे परिणाम में मेरे आत्मभाव आविर्भूत होते हैं या गिरते हैं, क्या होता है, उस तरह से वो चुनौती करेंगे। ऐसी बात है, इस तरह से सिलेक्शन करना क्या छूट है, इस प्रकार से सिलेक्शन करने की छूट है मुमुक्षु को भी, कि भले अपने से थोड़ा हीन योग्यता वाला हो, लेकिन योग्यता ऐसी हो कि जिसके साथ चर्चा करने से, संग में रहने से हमारे आत्मभाव आगे बढ़ते हो, तो उसकी मनाही नहीं है। उस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी एक बात कि संघ को, दूसरे का संघ को ही संघ कहते हैं, अकेले का तो संघ कहते नहीं। अब जब दो का संघ होता है तो एक ऊपर वाला होगा एक नीचे वाला होगा, बराबरी तो 100% बराबरी तो होगी ही नहीं। हाँ, जब ऊपर वाले का संघ होता है नीचे वाले को, तो उनको लिए तो वो अच्छा है, तो उसने तो सत्संग किया ऐसा बोला जाता है, और ऐसी सत्संग की भावना वाले का संग ऊपर वाला करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञानी को भी आपत्ति नहीं है क्योंकि मुमुक्षु इनके संग में आते हैं। लेकिन खुद को संग की इच्छा करना हो तो क्या करना, कि या तो बराबर ही वाले या तो ऊपर वाले की इच्छा करना, वो दोनों नहीं हो तो नीचे वाले में ये विवेक करना कि किसके संग से मेरे भाव आगे बढ़ते हैं, किसके निमित्त से आगे बढ़ते हैं। इतनी बारीकाई इसमें है, इतनी सूक्ष्मता से विवेक करने की बात है ये सत्संग की। मुमुक्षु कर सकते हैं। मुमुक्षु सत्संग के दौरान सत्संग का विषय समझ करके ये विवेक कर सकता है। क्यों? कि उसको नाप अपने से करना है कि मेरे परिणाम में क्या होता है। आप ये कहेंगे कि मुमुक्षु को उतनी परीक्षा करने की ताकत नहीं हो, योग्यता नहीं हो, सूक्ष्म नहीं हो, तो क्या करें। लेकिन सामने वाले की परीक्षा नहीं करनी है, मेरे परिणाम में क्या हो रहा है, इसके साथ सत्संग करने से मेरे परिणाम में सुधार होता है या बिगाड़ होता है, ये बात खुद तो देख सकता है। बस उस तरह से सत्संग करना है। कल बात चली थी ना सत्संग कैसे करना है, इस तरह से करना। और ऐसा सत्संग करने वाले भले ही हमारे समीप में नहीं रहता हो, दूर रहता हो, बहुत भाग तो ये होता है कि क्षेत्र की दूरी को छोड़ देता है मुमुक्ष। इतने दूर आना जाना, टाइम भी बिगड़ता है, तकलीफ भी होती है, कन्वीनियंस भी लगता है, तो अपन मुमुक्ष जो अगल बगल में रहते हैं उनके साथ सत्संग कर लो, ऐसा नहीं करना है। ये गंभीर बात है। जैसे हम कोई चीज खरीद करने को जाते हैं तो बढ़िया चीज मिलती है, वहां क्यों जाते हैं गाड़ी लेकर के? वो दूर भी होता है, वो स्टोर दूर भी होता है। ऐसा नहीं कि हमारे घर के पास सब अच्छे अच्छे स्टोर हो, वो कोई जरूरी नहीं है। हम वहां जाते वो चीज तो वहां लेना चाहिए, वो चीज वहां से लेनी चाहिए, वो चीज तो वहां से, घी तो यहां से लिया जाता है, कपड़े तो यहां से लिया जाता है, ऐसा क्यों? वहां तो हमको अच्छी चीज के लिए हम सिलेक्शन करते कि नहीं करते। तो सत्संग तो सबसे आत्मकल्याण का परम साधन है, उसके विषय में हम क्यों बेदरकार रहे? हमारी नेग्लिजेंस उस विषय में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कितना भी दूर हो, हमको लाभ का कारण हो तो हमको जाना चाहिए, चला के उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमको आपके संग में आना है, रहना है, सत्संग करना है, आपका समय बताइए, आपका अनुकूल समय कौन सा रहता है, आप कब मिलते हैं?
हैं?
वही मूल्यांकन होता है तो ऐसा होता है, मूल्य होता है तो इतना परिश्रम करेगा, उतना खर्च करेगा समय शक्ति का, मूल्य नहीं होगा तो चलो हमारे पास हो रहता है, अपन साथ में बैठ जाएं, ग्रंथ खोल दो, बातें कर दो, इसका नाम कोई सत्संग नहीं है। सत्संग वो है कि जिसमें सिद्धांतों की चर्चा हो और जिसमें हम कैसे आगे बढ़े इस विषय में पूरी पूरी छनावट हो, छानबीन हो। छनावट क्या बोलते हैं हिंदी में? छानबीन हो कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं, कल हम ऐसे थे, आज एक कदम कैसे आगे जाएं, वो बात होनी चाहिए।
योग्यता वाला मनुष्य हो, उसको ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन वो उस मनुष्य के पास अगर सच्ची जिज्ञासा लेकर के जाता है तो वो अवॉइड करेगा उसको समझाए?
नहीं, अवॉइड कोई नहीं करेगा। जो ऊपर वाला है वो फर्द के जिज्ञासु को देखेगा तो वो अपना काम छोड़ करके भी सत्संग करेगा। ऐसी योग्यता ऊपर वाले की होती है। अगर कोई अवॉइड करता है तो समझना कि वो भी सत्संग करने लायक है ही नहीं, मत करिए। बाकी जिज्ञासु में तो आपस में यही भावना रहती है कि जब इनको दरकार है आत्मकल्याण की, हमको भी दरकार है, दोनों एक मार्ग में चलने वाले हैं, तो अवश्य अवश्य साथ में बैठ करके सत्संग करना चाहिए। महापुरुष के संग में निवास है उसको हम परम सत्संग कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष के संग में निवास करना वो तो परम सत्संग बोला जाता है। मुमुक्षु मुमुक्षु के संग को सत्संग कहते हैं, ज्ञानी पुरुष के संग को परम सत्संग कहते हैं। क्योंकि कारण कि इसके जैसा कोई हितस्वी साधन इस जगत में हमने देखा नहीं और सुना भी नहीं। क्या टोटल लगाया है कि ज्ञानी पुरुष का संग मिले इसके जैसा आत्महित करने वाला दूसरा साधन हमने कभी देखा भी नहीं और हमने कभी सुना भी नहीं। ये अपना ज्ञान का निचोड़ रख दिया है इधर, तो कोई ये कहेंगे कि भूतकाल में बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, हमको तो उसका स्मरण हम करते हैं, भले बाहर में सत्संग में नहीं जाते लेकिन महान पुरुषों का स्मरण करते रहते हैं, वो भी सत्पुरुष थे बड़े बड़े, इस विषय में आपका क्या अभिप्राय है? वो बात को यहाँ कहते हैं कि पूर्व में हो चुके महापुरुष का चिंतन कल्याणकारक है, तथापि स्वरूप स्थिति का कारण हो सकता नहीं है। कल्याणकारक है मैंने, ठीक है आप वो चिंतन करते हो तो दूसरा चिंतन नहीं करते हो, इसके बजाय वो ठीक है कि दूसरे की पंचायत में तो नहीं जाते, महापुरुष का चिंतन करते हैं, लेकिन आप आत्मस्थिरता में, सम्यक दर्शन में, समाधि में, आत्मशांति में आ सकेंगे? नहीं, वो नहीं आ सकते, क्योंकि जीव को क्या करना यह वैसा स्मरण से समझ में नहीं आता। अभी क्या करना मुझे, वो स्मरण करने से समझ में नहीं आता, मेरे प्रयोजन भूत पर दृष्टि नहीं जाएगी। परोक्ष जो महापुरुष हो गए उनका विचार करने से वर्तमान में हमको क्या करना चाहिए वो बात समझ में नहीं आएगी। और प्रत्यक्ष योग में बिना समझाए भी क्या, प्रत्यक्ष योग में तो बिना समझाए भी स्वरूप स्थिति होना संभवित मानते हैं। मैंने सत्पुरुष के संग में रहे और वो मौन रहे, नहीं समझाए तो भी इसका परिणाम हमको समझाता है, जरूर नहीं है कि वो बोले, मौन रहे तो भी इसका परिणाम तो चालू रहता है, प्रकट है, वो हमको बोध देता है कि देखो इसका परिणाम अंतर में जाता है, तो हमको भी स्वरूप में अंतर में जाने का बोध मिलता है। ये जीवंत परिस्थिति है। प्रत्यक्ष योग में बिना समझाए भी स्वरूप स्थिति संभवित मानते हैं, और इससे ऐसा निश्चय होता है, इस बात से, इस प्रसंग से ऐसा निश्चय होता है कि ऐसे जो योग का और ऐसे प्रत्यक्ष चिंतन का फल मोक्ष होता है। सम्यक दर्शन नहीं लिया, मोक्ष की बात करते हैं। सत्पुरुष का योग होता है, प्रत्यक्ष मिलता है, प्रत्यक्ष योग में रहना होता है, चाहे वो बात करते हो नहीं भी करते हो, और 24 घंटा वो बात करते रहेंगे ऐसी तो बात बनेगी नहीं, कभी नहीं भी बोलेंगे, कभी ध्यान में रहेंगे, कभी बोलेंगे, कोई बात नहीं। उनके संग में, सहवास में रहने से बिना समझाए भी अगर पात्रता है तो देखने की क्या नजर चाहिए, देखने की पात्रता है तो बिना समझाए भी स्वरूप स्थिति हो सकती है, और इसका फल क्या है, निर्वाण पद है। यानी ज्ञानी पुरुष के संग का फल निर्वाण पद आया है, वहां तक बात को ले लिया है। कारण कि मूर्तिमान मोक्ष यह सत्पुरुष है, सत्पुरुष को सत्पुरुष नहीं कहा, सत्पुरुष को ज्ञानी नहीं कहा, सत्पुरुष को गृहस्थी नहीं बताया, सत्पुरुष को बताया कि मूर्तिमान मोक्ष है, क्योंकि कहीं बनते नहीं, कहीं बंधन में आते नहीं, बंधन में पड़ते नहीं।
प्रत्यक्ष
क्या मूर्तिमान वो तो ऐसा है कि वो तो नजर हो तो बात पूरी समझ में आती है और उसके असर भी आए बिना नहीं रहते। जब ये देखने में आती है तो बात के असर आए बिना देखने वाले को भी असर आए बिना नहीं रहेगी। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जगत में, विश्व में इसका कोई बराबरी का प्रसंग नहीं है। मोक्ष में चले गए हैं ऐसे अरहंतादि पुरुष का चिंतन, जैसे महावीर स्वामी हो गए, बहुत से केवली हो गए हैं, इसका चिंतन लंबा समय के बाद भाव अनुसार, कैसे उसमें भी भाव अनुसार मोक्षादिक फलदाता होता है। क्या कहते हैं कि मोक्ष में गए ऐसे अरहंतादिक पुरुष का चिंतन बहुत लंबा काल चालू रहे और भाव अनुसार, तो ऐसे होते हैं कि जिसको पूर्व के संस्कार होते हैं तो उनको मोक्ष के फल मिल सकता है। उनको प्रत्यक्ष पुरुष नहीं मिले तो भी वो परोक्ष का चिंतन करके, और वो चिंतन का साधन हमारे मंदिर हैं। हमारे मंदिर में जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष में गए और जाने वाले हैं, जिसके केवल ज्ञान प्राप्त हो गया हो और कोई निर्वाण पद में चले गए हो, दोनों की मूर्ति की स्थापना इसलिए हम करते हैं कि वहाँ इसका चिंतन होता है। चिंतन होता है तो क्या होता है कि इसके परिणाम को देखने का अवकाश वहाँ संस्कारी जीव को होता है, बिना संस्कार वाले नए जीव को नहीं होता है। इसलिए भाव अनुसार ऐसा शब्द रख लिया है, ये अपेक्षा है। हाँ, वो भी प्रत्यक्ष सत्पुरुष के योग बिना किसी को नहीं मिला और नहीं मिलता और न मिलने वाला भी है, तो आगे वो बात तो है ही। इसलिए सत्पुरुष के योग का और सत्संग का अधिक महत्व कृपालु देव ने दिया है, यही कारण से दिया है कि पहले तो एक ये घटना घटे तभी बाका गाड़ी आगे चलने वाली है, संस्कार मिले या नहीं मिले कुछ भी नहीं।
संस्कारी है,
वो तो खुद को पता ही नहीं होता।
काम हो जाए तब ऐसा कहने में आता है कि संस्कारी था या ये बैठ गया।
हाँ, ठीक बात है, वो तो है। और अपने लिए जब विचार करना है तब अपने को तो विचार कर लेना चाहिए। अगर हम संस्कारी होते तो कभी का काम कर लिया होता, अब हमारा काम नहीं हुआ है तो बात तो साबित हो चुकी कि हम तो संस्कारी है ही नहीं।
मंदिर जाते जाते तो बच्चों हो जाते हैं, तभी भी हमारा काम नहीं होता, तब हम संस्कारी काम
नहीं है, कहाँ के हैं, बात तो खत्म हो गई। सम्यक तो प्राप्त कर चुके हैं, क्या सम्यक तो प्राप्त कर चुके हैं ऐसा पुरुष का निश्चय होने पर, निश्चय मैंने पहचान, ज्ञानी पुरुष की पहचान होने पर और योग्यता के कारण से और अपनी पात्रता के कारण से जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। तो सबसे पहली बात तो वो है कि कम से कम यहाँ मुनि दशा की योग्यता में आना तो दिखता नहीं है, कम से कम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो उसका निर्वाण पद का रिजर्वेशन इधर हो जाता है, अल्पकाल में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। पहचान तो योग्यता बिना होती नहीं, योग्यता से अगर पहचान हो गई तो जीव अवश्य सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। वो बात तो उन्होंने 751 में भी लिखा है, 335 में बहुत जगह बात आई है। शुरू से अपने नॉलेज में बात है कि सत्पुरुष की पहचान ये पहला संकेत है और अपना पहचानो दूसरा संकेत है, अनुभव फाइनल संकेत है। एकमात्र ज्ञानी को ज्ञानी को चाहता है वो पहचानेगा, ज्ञानी भी चाहिए और दूसरी भी बात भी चाहिए, उसको योग्यता की पहचान नहीं आएगी, वो बात है।